جب 14-15 اگست کو آپ لوگوں کو آزادی ملی, لیکن اسی دن کشمیریوں کو ایک جیل ملی ہے. ان لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق ملے تاکہ یہ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ انہیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے, انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, انہیں آزاد مملکت کے طور پہ رہنا ہے. بندوق نے ایک تو کشمیری سوسائٹی کو تباہ برباد کر کے چھوڑا. وہاں کی شاعری کی محفلیں نہیں ہوتی ہیں, افسانوں کی محفلیں نہیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ جب بھی کوئی محفل ہوگی آپ پہ کریک ڈاؤن ہوگا.
السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر, قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر, اور جنوبی ایشیا کی, برصغیر جنوبی ایشیا کی نوآبادیاتی نظام سے آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر, وائس آف امریکہ نے پوڈ کاسٹ کی یہ سیریز آپ کے لیے تیار کی ہے. اور اس میں ایک جو نئی کڑی لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ محترمہ نعیمہ احمد مہجور کے ساتھ کشمیر پر جو 75 سال جو جس قسم کی صورتحال رہی ہے کشمیر میں اور جو گزری ہے کشمیر پر, اس پر گفتگو کرنے کے لیے. اور محترمہ نعیمہ احمد مہجور سننے والوں کے لیے, خاص طور پر جو ریڈیو سننے والے ہیں ان کے لیے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, مگر جو لوگ ریڈیو نہیں بھی سنتے اور ان کا تعلق علم و ادب سے ہے, انہیں بھی اس بات کا علم ہوگا کہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کے فکشن کے 3 مجموعے آ چکے ہیں, دہشت زادی, لاسٹ ان ٹیرر اور بیونڈ سائلنس, جس میں کہ مختصر کہانیاں ہیں. اس کے علاوہ کشمیر ڈائری اردو میں ان کی ایک اور کتاب حال ہی میں چھپ گئی ہے یا چھپ کے آنے والی ہے, غالباً چھپ کے آنے والی ہے, جی چھپ کے آنے والی ہے, سنگ میل لاہور سے. تو بہت میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے کم لوگ ہوں گے, چونکہ آپ کی جو کہانیاں ہیں اور آپ کے جو رپورٹاج ہیں اور جو ریڈیو میں بھی آپ نے براڈ کاسٹنگ کا کام کیا ہے طویل عرصے اخبارات کے ساتھ, ریڈیو کے ساتھ, اس میں آپ کا خاص ایک جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ فوکس رہا ہے, اور آپ جو مسئلہ آپ کے پیش نظر رہا ہے وہ خواتین کی صورتحال ہے, ایک کانفلکٹ زون میں خواتین کی صورتحال اور جو دوہرا جبر وہ سہتی ہیں, اور یہ آپ کا موضوع رہا ہے. اور میں چونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں, تو مجھے علم ہے کہ جس طرح سے آپ نے انہیں ٹریٹ کیا ہے, اس کے بعد پھر آپ جو کشمیر کا جو ویمنز کمیشن ہے اس کی سربراہ بھی رہیں 3 برس. تو بات کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں کہ جو خواتین کی صورتحال ہے پچھلے 75 برس میں, وہ آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں, اور وہ جو دوہرا جبر ہے جس کی طرف آپ نے اپنی تحریروں میں اشارہ کیا ہے, بلکہ تفصیل سے اس سے بحث کی ہے, وہیں سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیں گے.
شکریہ خلیق صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں آنے کی دعوت دی اور آپ نے سمجھا کہ میں اس پہ بات کروں. دیکھیے, جو کشمیری عورت ہے, آپ نے 75 سال کی تاریخ جو ہے, چاہے ہندوستان یا پاکستان کی, جب آپ اس میں بات کرتے ہیں تو وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے جب آپ اس میں کشمیر کی بات نہ کریں, اس لیے کہ کشمیر کا جو مسئلہ بھی ہے, آپ لوگوں کو اسی دن جب 14-15 اگست کو آپ لوگوں کو آزادی ملی, لیکن اسی دن کشمیریوں کو ایک جیل ملی ہے, جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے, جو پھر کشمیری عورت کی بات جب آپ نے کی ہے, کشمیری عورت کانفلکٹ زون میں رہ رہی ہے. وہ صرف 1947 سے نہیں, بلکہ تحریک جو ہماری سٹارٹ ہوئی تھی شخصی راج کے خلاف, جو مہاراجہ ہری سنگھ وہاں پہ تھے, وہ 1931-13 جولائی کو شروع ہوئی تھی. اور اس میں بھی اگر آپ عورتوں کا رول دیکھیں گے, عورتوں کا کردار دیکھیں گے, وہ انتہائی شاندار ہے, اس لیے کہ مردوں نے تحریک شروع کی, لیکن اگر عورتیں ساتھ نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ تحریک آگے چلتی. لیکن اب اس تحریک کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو 3 دہائیوں سے ہم کشمیر میں دیکھیں, پھر ملٹنسی شروع ہوئی, مسلح تحریک شروع ہوئی, اس کا جو سارا برینٹ ہے اس وقت سے لے کے آج تک, وہ سارا برینٹ کشمیر کی عورت نے لیا, اس لیے کہ اس کا کبھی بھائی کھو گیا, ڈسپیئر ہو گیا, اس کا بھائی ہلاک ہو گیا, उसका बच्चा नहीं आया रात को शाम को घर वापस, उसका हस्बैंड कहीं पे डिसअपियर है, वो हाफ विडोज कहलाई जाती हैं इस वक्त, उसको पता नहीं है मेरे शौहर हैं भी जिंदा है मरे हैं, मैं खुद को विडो कह दूं या नहीं कह दूं, इसीलिए उनको हाफ विडोज का नाम दिया गया है। और इस तरह की औरतें इस वक्त भी एक तादाद है हमारे पास, 10,000 से ज़ायद औरतें जो हैं जो अभी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि ये जो हमारा टर्मोइल, जो सियासी अफरा तफरी, तशद्दुद और रोज़ाना चार चार पांच पांच हलाकतें और इतने सारे मैसेकर्स हुए हैं, लेकिन इसका ठीक है इसमें मर्द तो इन्वॉल्व थे और हालात जो थे मर्दों के लिए भी बहुत ख़राब थे, लेकिन जो एक औरत के लिए ये हालात है उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कभी उस औरत को किसी ने नहीं समझा कि ये औरत जो है घर भी संभालती है और बाहर भी निकलती है और सियासी ये जो इस वक्त शोरूश भी है उसमें भी हिस्सा ले रही है और इसको संभाल रही थी। तो मेरे ख्याल में जब भी तारीख लिखी जाएगी और इस वक्त भी जो भी लिखा जा रहा है उसमें आप कश्मीरी औरत को, आपको उसको अपना किरदार जो उसको है उसको उजागर करना होगा और उस पर जो बीती है वो जिन मसाइल से गुजर रही है उसको देखना होगा, समझना होगा। और फिर आपको पता ही है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारा चल रहा है उसमें हर कोई कश्मीरी पिस रहा है और औरतें दोहरी तरह पिस रही हैं, एक तरफ पेट्रियार्की है दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट है और ये इस दोनों में पिस के रह गई है। वो उस औरत की आज हमारी दास्तान है जो दुनिया से अभी मेरे ख्याल में वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, उसका तारुफ नहीं हुआ है और अभी तक लोगों को पता नहीं है कि कश्मीरी औरत जो है किन मुश्किलात से गुजर रही है।
मैं समझता हूं कि आपने पितरशाही निज़ाम की तरफ, पेट्रियार्की की तरफ भी एक तवज्जो दिलाई है अपनी तहरीरों में भी, लेकिन नईमा अहमद महजूर साहिबा, आपका ताल्लुक चूंकि वादी से है और अब आप आती जाती रहती हैं और आप मेन लैंड जो हिंदुस्तान है वहां भी जाती हैं, पाकिस्तान भी आपकी आमद रफ्त रही है, आपसे मेरा सवाल यह है कि देखिए चार जंगें तो हो चुकी कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के माबैन, और ये अमन की के क़याम की कोशिशें और कश्मीर के मसले के हल की या तनाज़ा जैसे हम कहते हैं उसके हल की भी कोशिशें इन दोनों में होती रहती हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात हो या नवाज शरीफ और वाजपेयी जी की मुलाकात हो, तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कश्मीरी कहाँ खड़े हैं? मतलब ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल मुझे तो महसूस होती है कि यानी जो कश्मीर की ज़मीन है और कश्मीर का जो पानी है वो शायद कश्मीर के अवाम से और कश्मीर के अवाम के खून से ज़्यादा अहमियत रखता है इन दो मुल्कों के लिए। क्या ऐसा ही है? क्या कश्मीरी इसे ऐसे ही देखते हैं या आप समझती हैं कि एक ख़ास तरह की हमदर्दी है किसी एक मुल्क के लिए बास तबकात में?
जी देखिए, पहले तो आपको देखना होगा कि जो आप कह रहे हैं कि भाई कश्मीरी कहीं पर नहीं है, यही तो हमारा अलमिया है कि ये जो कश्मीर का मसला है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में है। आपने कहा चार जंगें हुई, 11 समिट्स हुए हैं, सरबरा इजलास हुए हैं कश्मीर के मामले में, 13 से ज़ायद यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस जो करारदादें हैं इस पे हुई हैं और जिसमें कहा गया दोनों मुल्कों से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, कि भाई ये जो पूरा खिता है वो चाहे आज़ाद कश्मीर है, वो चाहे जम्मू कश्मीर है, वो चाहे लद्दाख है, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा खिता है भाई 47 में जो इसकी सिचुएशन थी, जो पोजिशन थी, जो कंपोजिशन थी, इन सब को मौका मिलना चाहिए, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज अगर हो जाए कि इन लोगों को अपने वोट का हक मिले ताकि ये लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि इन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना है, इन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, इन्हें आज़ाद ममलिकत के तौर पे रहना है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है इसका मौका ही नहीं दिया गया, बल्कि हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को वहाँ से अपनी फौजें निकालनी थी, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं हिंदुस्तान को पहले फौजें निकालनी थी, हालांकि इसका मैकेनिज्म भी यूनाइटेड नेशंस ने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ, महाराजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया इंडिया के साथ, उसके बाद फिर जंग हुई पाकिस्तान के साथ, जो रेडर्स जिनको हम कहते हैं भाई वहाँ से कुछ कबायली आ गए 1948 में, वही 47-48 का ये ज़माना जो था, तो इससे सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई, इसका अब आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला गया कुछ हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने खुद ही आज़ादी का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान से मिल गए, जम्मू कश्मीर रहा। और अगर महाराजा ने उस वक्त भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था इंडिया के साथ अपनी मर्जी के साथ, लेकिन फिर उनको जलावतन किया इंडिया ने, उनको फिर आने ही नहीं दिया, वो मुंबई में फिर मर गए वहीं पे, और उनके बेटे को बनाया कि सदर रियासत। इसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला, जो उस वक्त के बहुत ही मकबूल तरीन रहनुमा थे, कश्मीरियों की एक आवाज़ थी, जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की सपोर्ट की, उसके बाद से सिचुएशन बिल्कुल उल्टी पड़ गई। इसलिए कि वहाँ अवाम जो थे, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, अवाम उस वक्त चाह रहे थे कि भाई टू नेशन थेरी के साथ या तो इसको पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, या महाराजा चाह रहे थे कि वो आज़ाद ममलकत के तौर पे रहे। बल्कि 3 महीने तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका ये पूरा था आज़ाद था, और वो कह रहे थे कि भाई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है और हमें रहना चाहिए ताकि हम अपना फैसला आराम से कर सके, लेकिन करने नहीं दिया। फिर हिंदुस्तान की फौज पहुंच जाती है कश्मीर में, वहां से आज़ाद कश्मीर अलग होता है। तो ये सारी सिचुएशन, उसके बाद कोशिश भी की फिर दोनों मुल्कों ने, अयूब खान ने ताशकंद माहिदा जो हुआ, उसके बाद बहुत सारे, उसके बाद फिर शिमला माहिदा जब बांग्लादेश वजूद में आया। लेकिन सवाल ये है कि ये लग रहा है कि इनमें ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर का मसला हम समझ रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने कोशिश की कि चले हिंदुस्तान के साथ, अगर अब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी किया है, इल्हाक किया है, तो चले इनके साथ रहें। इवन गिलानी साहब, जो सईद अली शाह गिलानी साहब जो लीडर थे, अलहदगी पसंद लीडर जिनको हम कहते हैं, उन्होंने भी, वो भी मेंबर असेंबली बन गए। बहुत सारे जो हमारे, जो बाद में जिन्होंने बंदूक उठाई, वो भी इलेक्शन में आए, और इलेक्शन हिंदुस्तान के आईन के तहत जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें हिस्सा लिया। लेकिन हर बार देखा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज जम्मू कश्मीर के लिए बनाई जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं थी। वो सिर्फ यही थी कि भई आपको ज़मीनें जायदादें इनकी जो है इसको हड़प करना है, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे बिजली के इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इस तरह से कश्मीरियों को इस वक्त अगर आप देखेंगे, जब एब्रोगेशन, ये जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, अंदरूनी खुद मुख्तारी जो दी गई थी उसको भी आपने ख़त्म किया, वो भी आईन के तहत था, हिंदुस्तानी आईन के तहत उसको भी आपने ख़त्म किया। उसके बाद आपने तो बेइख्तियार किया, पावरलेस है कश्मीरी, उनके पास अब कुछ नहीं है। अब वो देख रहे थे कि भाई कम से कम जो है आलमी बिरादरी है, पाकिस्तान है, थोड़ा सा इस पे कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत पे दबाव डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वजह इस वक्त आप देखेंगे कि कश्मीरी जो है खामोश हैं, हेल्पलेस हैं, होपलेसनेस है, वहाँ पे मायूसी इतनी फैली हुई है, खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाज भी वहाँ पे हिंदुस्तान की है। तो यही हालात हैं, और कश्मीरी समझ रहे हैं कि हमारे पास तो अब कुछ नहीं है, कुछ ज़मीनें तो आज़ाद कश्मीर में हैं, वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत है, कुछ तो हिंदुस्तान के पास है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने अलग भी कर दिया है। तो सारी बंदरबांट जो हो रही है, और इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कश्मीरियों का अलमिया ये है कि उनके पास अब कुछ नहीं है, ना तो ज़मीन है, ना शिनाख्त है, ना जंडा है, ना आईन है।
लेकिन ये देखिए, एक ये जाहिर है एक बहुत तकलीफ देह सूरत हाल है, मगर आपको आगे की तरफ, यानी इसके, इसका हल क्या नजर आता है? चूंकि जो सफरिंग है, जो जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं वहां, इसमें अब क्या होगा? यानी क्या डीमिलिटराइज कश्मीर हो सकता है? क्या ये एक ये अमली बात, प्रैक्टिकल बात है कि कश्मीर डीमिलिटराइज हो जाए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की फौजें 1947 वाली सूरत हाल पे, जो 14-15 अगस्त 1947 की सूरत हाल थी, वो उन बॉर्डर्स पे वापस चली जाएं? और क्या ये मुमकिन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम कश्मीरी करें? क्या ये है, ये इस इन बातों के इम्कानात हैं या नहीं?
देखिए, जो आप कह रहे हैं मुमकिन तो कुछ भी है। देखिए, जो मसला होता है उसका सलूशन भी होता है, लेकिन आपको देखना है कि क्या कोई कमिटेड है कि इस मसले को हल करने के लिए, क्या कोई चाहता है कि इस मसले को हल करे। क्योंकि जब जनरल मुशर्रफ ने भी 4 पॉइंट प्रपोजल जो दिया था कश्मीर मसले को हल करने के लिए, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक फेस सेविंग के लिए, भाई पाकिस्तान के पास जो कुछ है वो उनके पास रहे, हिंदुस्तान के पास जो कुछ है वो उनके पास रहे। लेकिन जो कश्मीरी आपस में बिछड़े हुए हैं पिछले 70-75 बरसों से कम उनको मौका मिले, एक सॉफ्ट बॉर्डर रहे ताकि वो आने जाने का जो एक रास्ता है, एक राहदारी है, उनके लिए खुली रहे। लेकिन जब वो आए भी, दिल्ली आगरा समिट हुआ उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे लग रहा है उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त इसको कवर भी कर रही थी बीबीसी के लिए, तो मुझे लगा उस वक्त जो सबोटाज किया गया था वो इंडिया की तरफ से किया गया। हालांकि जनरल मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे, जो सदर थे, जो सब कुछ थे उस वक्त, और उनकी तरफ से वो प्रपोजल आना, वो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी दोनों मुल्कों को इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन वो सबोटाज हो गई। उसके बाद से फिर कारगिल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आपको देखना है कि जब अंदरूनी खुद मुख्तारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने ख़त्म की, हालांकि आईन के मुताबिक अगर आप देखेंगे करना नहीं चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, लेकिन उन्होंने किया, और अब वो समझ रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा काम अब ये है कि भाई डेमोग्राफी जो है, जो आबादी के तनासुब है मुसलमानों की वहाँ पे, उसको थोड़ा ख़त्म करना है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो 25 लाख बाहर से लोग आएंगे जो वोट डालेंगे। कश्मीर की आबादी इस वक्त 70 लाख है
वादी की,
और वादी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर आप 70 लाख में 25 लाख तो आप बाहर से ला रहे हैं, 10 लाख से जायद फौज है वहाँ पे, यात्री जो हमारे आते हैं वहाँ पे हिंदू यात्री, उन वो भी 10 लाख 13 लाख इस साल आए। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में, आपको कहाँ फिर वोट का हक भी नहीं मिलेगा।
नईम अहमद महजूर साहिबा, एक बहुत अहम सवाल यहाँ कश्मीरी पंडितों के हवाले से उठता है, इसमें किस हद तक सदाकत है कि उन्हें बाकायदा, जो जब कश्मीर में अस्करियत पसंद सियासत शुरू हुई है तो उन्हें बेदखल किया गया।
देखिए हारिस, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं इसकी ऐनी शाहिद भी हूँ, इसलिए कि मैं उस वक्त रेडियो में आई थी, उन्हीं दिनों मैंने स्टार्ट ही किया था करियर
श्रीनगर में।
तो हमारे साथ उस वक्त रेडियो में सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित होते थे, क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही जहीन। उस वक्त क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल बना था, डेफिनेटली ऐसा माहौल बना था कि भाई मस्जिदों के मीनारों से आवाज़ें आ रही थी, यहाँ क्या बनेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, इस तरह की चीज़ें आई थी। और कश्मीरी, जब चूंकि ये कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी में थे, तो इनको लगा कि यहाँ पे जो माहौल बन रहा है, और हो सकता है कि कुछ हलाकतें भी हुई थी कश्मीरी पंडितों को, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी हलाक किए जा रहे थे, वो मुसलमान जो प्रो इंडिया एलिमेंट यानी हिंदुस्तान नवाज जो एलिमेंट थे वहाँ पे, ये पॉलिटिशियन सियासतदान, उनको भी हलाक किया गया। बल्कि पहली हलाकत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बंदा था उनको, उसके बाद से कश्मीरी पंडितों के बारे में ये वहाँ पे अफवाह थी कि भई ये रॉ एंड आईबी के एजेंट है, और इसीलिए उनकी भी लिस्टें बनने लगी, और 32 से जायद पंडित जो हैं उस वक्त हलाक किए गए। टोटल इनका नंबर है 289 जो टोटल इस वक्त हलाक हुए हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि 1 लाख से जायद कश्मीरी मुसलमान अब इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा। हालांकि चाहे नंबर कम है या ज़्यादा है, लेकिन इंसानी लाइफ जो होती है वो चाहे पंडित की है मुसलमान की, प्रेशस लाइफ होती है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी को एक खौफ रहता है जब मेजॉरिटी में इस तरह की चीज़ें हों। गन आपके पास आया, बंदूक आपके पास आया, फिर जब जगमोहन को वहाँ पे बहसे थे गवर्नर भेजा गया, जगमोहन बीजेपी की आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि वो जो है वो हो सकता है कि वो इस तरह की पॉलिसी है कि उन्होंने पंडितों को कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं और हम इनसे अस्करियत पसंदों से निपट लेंगे, इस तरह का भी एक वहाँ पे जी जगमोहन जो थे ना वहाँ पे वो गवर्नर थे
जी
जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनको भेजा गया था इंडियन गवर्नमेंट ने। गवर्नर हमेशा इंडिया से आता था, जो
जी
लोकल चीफ मिनिस्टर होता था वो कश्मीरी होते थे। लेकिन जब इनको लाया, जगमोहन को, इन्होंने बल्कि किताब भी अपने लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस, वो पूरी कश्मीर पे उस वक्त की जो सिचुएशन थी उस पे लिखी थी। और उसमें एक ख़ास कोट इन्होंने बताया था कि मैंने कश्मीर को, कश्मीर जो पाकिस्तान ने पूरा निगल लिया था, मैंने, मेरी कोशिशों ने उसको पाकिस्तान के हलक से वापस लाया है। तो इस तरह की इनकी कार्रवाई।
ये किस सन की बात है?
ये मैं 89-90 की बात कर रही हूं,
जब ये इलेक्शन रिग हुए हैं।
हाँ, क्योंकि मिलिटेंसी भी 89 में शुरू हुई और 90s में फिर जगमोहन आ गए, और क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने, फिर जब ये जगमोहन आ गए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा मैं, ये जिस बंदे को लाया गया है ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी समझा जा रहा था कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी इनकी दिल्ली में भी रही थी। तो इस तरह से ये सिचुएशन जो थी बहुत ही बनाई जा रही थी, खौफ भी था, बंदूक भी चल रहा था, लोग भाग भी रहे थे, और उसमें कश्मीरी पंडित भी जो है वो उठ के निकल गए और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में गए, बल्कि कुछ वापस भी आए। लेकिन उसके बाद भी 10,000 कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जो आज भी वहाँ पे रह रहे हैं, और जो कह रहे हैं खुद कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको हम ये कह दें कि मुसलमान हमारे मुखालिफ थे।
कश्मीरी पंडितों का जो सवाल है वो तो आपने बहुत तफसील से उसको बयान किया, लेकिन अगर हम कश्मीर की तहरीक आज़ादी से मुतालिक कुछ पुरानी किताबें देखें तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि जो जैसे प्रेमनाथ बजाज की किताब है या दीगर और किताबें हैं, तो ये एक कोई इस्लामी आज़ादी की तहरीक नहीं थी, ये एक कौमी आज़ादी की तहरीक थी, यानी मजहबी आज़ादी की तहरीक नहीं थी। जैसे फ़लस्तीन में भी हम देखते हैं PLO के दौर तक, पहले जब यासर अरफात हयात थे, उसके बाद फिर हम हमास का राइज देखते हैं, और उसमें जैसे जॉर्ज हबश टाइप के मुख्तलिफ मजाहिब के लोग PLO में शामिल थे, मसीही भी थे और अरब मुसलमान भी थे, अरब मसीही भी थे। बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में भी हम ये देखते हैं कि बहुत से जो पंडित थे या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, पंडित नबी हों, वो भी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में शामिल थे। फिर यकदम कैसा, ये क्या हुआ कि ये एक मजहबी तौर पर एक मजहबी तहरीक में तब्दील हो गई कश्मीर की आज़ादी की तहरीक?
देखिए 47 में ही ये पता चला था कि उस वक्त तक हमारे जो, उस 47 से पहले रामचंद का कश्मीरी पंडित जो थे प्राइम मिनिस्टर थे महाराजा हरि सिंह के, और वो चाह रहे थे कि कश्मीर को आज़ादी मिले और आज़ाद रहे, उसको हटा के फिर मेहरचंद महाजन को लाया गया है। उसके बाद से 47 के बाद से थोड़ी सी तारीख चेंज हो गई, जिसके बारे में शेख अब्दुल्ला ने खुद भी लिखा है, उनकी किताब जो है आतश चिनार, जो पूरी उनकी हिस्ट्री है कि 31 से लेके क्या क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में, ये मोड़ जो है सियासी मोड़। और उसमें वो लिख रहे हैं कि चूँकि कश्मीरी पंडित जो थे वो महाराजा के भी बहुत करीब थे, और इसके बाद से जो वो इंडियन गवर्नमेंट आई, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट अब जो इलाक हुआ, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित थे वो हिंदुस्तान नवाज थे, और वो हमेशा से चाह रहे थे कि अब जो कुछ हो गया अब हिंदुस्तानी है। अब जब अस्करी तहरीक शुरू हुई, वो शुरू तो हुई है आज़ादी, जिसमें हम समझ रहे थे कि हर कोई उसमें शामिल होगा, चाहे सिख है, पंडित है, हिंदू है, कोई भी, क्रिश्चियन इवन जो वहाँ पे ईसाई बिरादरी के लोग भी थे। JKLF ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने जब तहरीक शुरू की तो उन्होंने आज़ादी का नारा दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब देखा ये तहरीक जो है एकदम से मकबूलियत इख्तियार करने लगी है, इसमें जो समझ रहे हैं बहुत सारे अक्सर कश्मीरी भी और नॉन मुस्लिम भी, कि इसमें इन्होंने जब नारा दिया, एक नारा है कि यहाँ क्या बनेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कि वो उन्होंने समझा कि ये समझ रहे हैं ये इस्लामी ममलिकत के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें जब हिजबुल मुजाहिदीन का एलिमेंट आया तो वो ये कैटेगोरिकली कहने लगे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो दूसरा नॉन मुस्लिम एलिमेंट था वहाँ पे, उनको लगा कि ये इस्लामी तहरीक है, और इंडिया ने इसको कैश किया। इंडिया ने कहा कि ये अब लिबरेशन तहरीक नहीं है, जो जिसमें सेक्युलर तहरीक जिसे आप कहें, जो शेख अब्दुल्ला ने भी पहले शुरू की थी, वो ये नहीं रही है, क्योंकि इसमें एक तो नंबर वन बंदूक आ गया, दूसरा जो स्लोगन्स बने वो उनको पसंद नहीं आए, इसलिए कि वो क्यों इस्लामी ममलिकत में रहना चाहेंगे। तो उन्होंने इस पे एतराज़ किया और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का एक नरेटिव है वो फिट बैठ गया। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन भी 9/11 के बाद से सिचुएशन हुई, तो ये तो फिर इसको दहशतगर्दी से जोड़ा गया और जो जेन्युइन तहरीक थी आज़ादी की वो ख़त्म हो गई।
इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा आपकी नज़र में?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान का किरदार किसी हद तक, जहाँ तक ये बंदूक वगैरह का था, इसमें ये अच्छा नहीं था, इसलिए कि बंदूक ने एक तो कश्मीरी सोसाइटी को तबाह बर्बाद करके छोड़ा, इतनी हलाकतें और इतने हमारे 85,000 बच्चे जो हैं वो ऑर्फन्स हैं, इस वक्त यतीम हैं, हमारी औरतें जो हैं 10,000 से मैंने कहा अभी हाफ विडोज़ हैं, 13,500 हमारी औरतों के रेप्स हुए हैं, मोलेस्टेशन हुई है। मैं आपको कितना नंबर दे दूं और आपको बताऊं। इसमें देखिए पाकिस्तान का रोल ये है कि भाई अगर आज़ाद कश्मीर में लोग गए थे बंदूक हासिल करने के लिए, पाकिस्तान रोक सकता था, पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था। एक सही पीसफुल मोमेंट और एक सही नरेटिव दुनिया को बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने न तो कभी इसका सही नरेटिव पेश किया और न कश्मीरियों को खुद पेश करने की इजाज़त दी। जैसे हिंदुस्तान ने चाहा अपना नरेटिव दुनिया को बेचा, इसी तरह से पाकिस्तान ने अपना नरेटिव दुनिया को बेचा। तो कश्मीरियों का जो नरेटिव था कि वो चाहते थे और वो खुद लड़ते और पीसफुल लड़ाई लड़ते, वो इस तरह से नहीं हुआ। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनली भी वो समझौता, पहले पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान खुद कह रहा है कि इधर इंडिया और पाकिस्तान, फिर आप 71 में शिमला मुहिदा करते हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये बायलैटरल है इंडिया और पाकिस्तान, इसमें आलमी बिरादरी का रोल आप ख़त्म करते हैं, फिर आप उससे भी नीचे आके 4-point प्रपोज़ल पे आते हैं, आप कह रहे हैं कि अब तो सब जो कुछ हो गया, आप उधर रहें हम इधर रहें, बस कुछ भी नहीं अब हमारे पास। उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो टोटली इतना डाइल्यूट हो गया, एज अ स्टेक होल्डर आप उसको नहीं देख रहे हैं, जिस तरह इंडिया कह रहा है कि मैं स्टेक होल्डर हूँ, पाकिस्तान तो कह रहा है यूएन रेजोल्यूशन, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर एक नरेटिव भी बिल्ड करना है, आपको आलमी बिरादरी के सामने भी जाना है, उनको बताना है। उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान टोटली फेलियर।
जो आलमी एक किरदार पाकिस्तान को अदा करना चाहिए था कश्मीर के लिए, वो उससे आप बहुत नाखुश हैं। लेकिन अब मैं अगर एक, ये तो हमने बड़े बड़े माहदों की और बात की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इससे कहीं ज़्यादा सिफारती तौर पर और पुरम एक हल इस मसले का निकालने के लिए और कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन आम लोगों पर, आम कश्मीरी पर क्या गुजर रही है? मतलब ये उसकी भी ज़रा दो एक मिसालें दे के बताइए। चूँकि एक बदकिस्मती पाकिस्तान में ये भी रही है कि अब ये ज़ाहिर है कि हमारे जो रियासत है या रियासत के इदारे हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो ये बात नहीं तस्लीम करते, लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तान भर में घूमता रहता हूं और काम किया है मैंने मुल्क भर में, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो पंजाब के अलावा जो छोटे सूबे हैं पाकिस्तान के, या पंजाब में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के मसले को में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की रियासत पर काबिज अशराफिया और पाकिस्तान की फौज का मसला है। तो जो लोग भी पाकिस्तान के उन इदारों से नाखुश हैं या पाकिस्तान की रियासत से नाखुश हैं, उनके लिए, और उनकी बड़ी तादाद है, ऐसा नहीं कि उनकी कोई कम तादाद है, उनको कश्मीर का दुख दुख नजर नहीं आता। ये मैं बहुत यानी बदकिस्मती की बात है, मगर ये इसे हमें मानना चाहिए। तो अब यानी आपकी नज़र में जो आम लोग हैं वो अभी भी मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कश्मीर में, लेकिन उन पर गुजर क्या रही है?
देखिए हारिस, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। कुपवाड़ा हमारा एक जिला है जिसमें सरहद जो है LOC आज़ाद कश्मीर के साथ लगती है। वहाँ पे एक गांव है दर्दपुरा। दर्दपुरा हमारा एक ऐसा गांव है जिसमें कोई मर्द ही नहीं है। उस गांव के तमाम मर्द जो है अस्करी तहरीक में शरीक हो गए और बॉर्डर पे या तो हलाक किए गए या एनकाउंटर में मारे गए या कहीं पे डिसअपियर हो गए। और वहाँ तमाम औरतें जो हैं, जब मैं उनसे मिली और उनसे पूछा, वो आज भी इंतज़ार कर रही हैं कि या तो हमें पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट हमें बताएगी कि हमारे मर्द कहाँ हैं, अगर उनको मारा गया है उनको कहाँ दफनाया गया है। 7,500 जो हैं हमारी अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स हैं, जिन पे नंबर प्लेट लिखे हैं 1, 2, 3 ग्रेव्स। ये आप देखिए ट्रेजडी क्या है। और उन औरतों से जब आप पूछते हैं, मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा कि अब तो आपके शोहर को 25 साल हो गए, 25 साल से ज़ायद अरसा हो गया, अब ना तो आपको पता है वो मरा हुआ है, वो हलाक हुआ है, वो लापता हो गया, वो क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जहलम के किनारे रोज़ बैठती हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मरने के दम तक मैं इंतज़ार करूँगी, मुझे नहीं पता है वो मर गया, अगर वो मर गया होता तो मुझे पता होता। और वो इसी गम में उसकी चार बेटियां शादी भी नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारे डैडी वापस आएंगे, और उनको ये भी पता नहीं है। इस तरह की ट्रेजडीज हैं वहाँ पे। जब आप उसको देखते हैं और उन औरतों से मिलते हैं, आप यकीन करिए, आप इतने डिप्रेस होते हैं, आपको कोई दवाई खानी है तभी आपको नींद आ सकती है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जब दर्दपोरा गई हूँ, मैं 3 दिन उसके बाद जब आई वापस, मैं 3 दिन नहीं सोई हूँ। और ये सिचुएशन है वहाँ पे। और वही लोग कह रहे हैं कि अगर उस पाकिस्तान ने हमारे इन लोगों को वहाँ से बंदूक तो दिया था, लेकिन कम से कम ये भी देखना था कि ये जो यहाँ पे इस वक्त जो जिंदा लाशें हैं वहाँ पे, उनके लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई, अगर आवाज़ उठाई क्या सही फोरम्स में आवाज़ उठाई। फिर आपके जनरल जो बाजवा साहब है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई माजी को बुला देना चाहिए। वो औरत मुझसे कह रही है, आप जनरल बाजवा से कहिए कि मैं किस माजी को बुलाऊं, मैं कैसे बुलाऊं, मेरी 4 बेटियां यहाँ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि मेरा इनके डैडी वापस आएंगे, जो सरहद पार करके गए हैं वो कहाँ है। इस तरह की सिचुएशन जब आप लोगों से सुनेंगे जो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को जो रोल करना था क्यों नहीं किया, अगर वो कह रहा था कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट का एक शरीक हूँ, या तो आप कैटेगोरिकली कश्मीरियों से कहिए कि भाई हमारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो ठीक है ना, कश्मीरी बेचारे देखेंगे किस तरह से आगे चलेंगे।
एक और सवाल यहाँ उभरता है, और वो चूंकि आप एक सहाफ़ी के साथ साथ अदब से भी आपका ताल्लुक है, कि कश्मीरी अदब और फ़न की क्या सूरत हाल है, और उसमें ये जो दुख है और ये जो एक मुस्तकिल एक जबर है, ये कैसे मुनक़िस हुआ है आपके यहाँ राइटिंग में और यानी तमाम फ़नून लतीफ़ा के शोबों में।
देखिए, जो हमारे लिखने वाले जो होते थे बहुत पहले, जो हमारे पहले की जनरेशन है, उन्होंने तो लिखना ही बंद किया जब ये शुरू हुआ, जब अस्करी तहरीक हुई, उसके बाद से आप देखेंगे 10-20 साल का अरसा जो है उसमें कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन उसमें हमारे जो नौजवान जो उस दौर में पैदा हुए, फिर पले बड़े जवान हुए, उन्होंने देखा कि क्योंकि वो क्रैक टाउन में पैदा हुए, क्योंकि वो एनकाउंटर में पैदा हुए, इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने गन देखा, बंदूक ही सिर्फ उनके आगे पीछे थी, तो उन्होंने ये सारा जो दौर देखा, उसमें आप देखेंगे कि नए जो हमारे जो तसनीफ़ ये जो किताबें जो हैं हमारी तसनीफ़ात जो बहुत सारी आई हैं फिक्शन में और नॉन फिक्शन में, जिसमें आप बशारत पीर कर्फ्यू नाइट्स उसकी आई, वहीद मिर्ज़ा की आई कोलैबोरेटर, मेरी किताब आई लॉस्ट इन टेरर, और इसके बाद से अब नए जो जनरेशन है नई, वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं और बहुत फोकस है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पे कि हमने क्या देखा, किस सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, और काफ़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका काफ़ी सराहा जा रहा है। लेकिन इनसाइड हमारे कश्मीर में या इंडिया में उसको इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई, इसलिए कि वो जैसे मेरी किताब है लॉस्ट इन टेरर, हालांकि उस पर इंटरनेशनली बहुत सारे उस पर रिव्यूज़ आए, लेकिन इंडिया में बहुत कम, हिंदुस्तान टाइम्स के बगैर बहुत कम, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत कुछ और बताती है, उस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी, ये एग्जेजरेट किया गया है, हालांकि मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। तो इसी तरह से आजकल जो है कॉन्फ्लिक्ट लिटरेचर जो हमारा है बहुत ज्यादा आ रहा है।
और शायरी की क्या सूरत हाल है? मेरा मेरी ذاتی दिलचस्पी चूंकि हाँ, है तो मैं पूछूंगा आपसे।
शायरी बहुत बहुत नए शायर जो हैं और जो इनकलाबी शायरी और जो दर्द जिसमें टपक रहा है पूरा वो शायरी आ रही है, इसलिए कि लेकिन आप यकीन करिए कि वहाँ की शायरी की महफिलें नहीं होती हैं, अफसानों की महफिलें नहीं होती है, इसलिए कि जब भी कोई महफिल होगी आप पे क्रैकडाउन होगा, आपको हिरासत में लिया जाएगा, आप पे PSA लगेगा, आप पे UAPA लगेगा, इस तरह के कवानीन, आप जेल जाएंगे और पता नहीं चलेगा किस जेल में आप, क्योंकि 2 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा, इस तरह के कवानीन सख्त कवानीन है कि किसी को पता नहीं लगेगा आप जेल किस जेल में हैं, क्या आपकी जमानत भी नहीं हो सकती है। तो लेकिन लिखने वाले बहुत हैं, लिख रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन इसका एक्सप्रेशन आप इस वक्त नहीं देखेंगे।
कश्मीर के सिलसिले में सामईन गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है, चूंकि जो चंद नंबर ही इन्होंने बताए हैं 85,000 10,000 हज़ारों की तादाद में जो शहादतें हैं, हज़ारों की तादाद में जो बेवाएं हैं और हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चे हैं, इन सब के बावजूद वो जद्दोजहद जारी है। और देखना ये है कि भारत और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो कब तक कश्मीरियों को इस मसले का महवर नहीं समझेंगी, क्योंकि जब तक कश्मीरियों के बारे में कश्मीरियों से गुफ्तगू नहीं होगी उस वक्त तक शायद हम एक देरपा हल तलाश नहीं कर सकते। और इस कश्मीर जन्नत नज़ीर एक इतनी खूबसूरत वादी और उसके इतने खूबसूरत रहने वालों को मुसलसल जबर और मुसलसल एक तकलीफ पहुंचा रहे हैं दोनों ममालिक भी, और जो दहशतगर्द या शिद्दत पसंद तंजीमें हैं दोनों तरफ से वो भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नईमा अहमद महजूर साहिबा आपका कि आपने वक्त निकाला और इस पॉडकास्ट में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात।
इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगू शुरका की ज़ाती राय पर मबनी है, वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।
पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल के इस मौके पर VOA उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनवों के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और फिक्र अंगेज़ ख्यालात। इस तारीखी मौके पर VOA उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में उर्दू अदब के 75 सालों पर।